आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश।
ओम श्रद्धात्मने नमो
हेलो हेलो अभी अभी हेलो 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 पूज्य श्री गुणभद आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और उसका सुंदर मनोहर जी वर्णी के सहजानंद जी के जो प्रवचन है उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 77 पर हम आ गए। 77 यह हम पढ़ते हैं। मुझे वो माइक देना, इसमें आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 शायद बैटरी इसकी लो हो गई। हेलो हेलो नीचे का पैराग्राफ माया व्यवहार वहां से पढ़ेंगे। यहाँ कोई कहे, यहाँ कोई किसी की प्रशंसा करता हो तो वहाँ यह यौन समझना मोह के रोग से पीड़ित प्रशंसा के लोलुपी दोनों ओर के पुरुष है, करने वाले और करके लेने वाले। जो प्रशंसा करते हैं वे भी प्रशंसा की इच्छुक है और जिसकी प्रशंसा की गई है वह यदि संतुष्ट होता है, मौज मानता है तो वह भी प्रशंसा का इच्छुक है। ये हो सकता है ना कि वो नहीं इच्छुक और उसकी प्रशंसा की जाए, यदि वो भी होता है तो दोनों ही इच्छुक है। अंतरंग में जब प्रशंसा की कल्पना जग गई तो यही तो कलुषता है, विपदा है। एक नीति में कहा है, उष्ट्राणाम विवाहेशु गीतम गायन्ति गर्दभाः। परस्परम प्रशंसन्ति अहोरूपम अहोध्वनि। तो बहुत बार बताए ना अहोरूपम अहोध्वनि। ऊंट के विवाह में गधा था, उसने गीत गाने के लिए और वो ऊंट की प्रशंसा हो यानी उससे तो अच्छा लगता है ना कि उससे गीत गा रहे हैं, इसलिए कहते हैं क्या तुम्हारा रूप है और वो कहते हैं क्या तुम्हारी ध्वनि है। ये गधा उसको कहते कितना रूप अच्छा है और ऊंट उसको कहता है तुम्हारी ध्वनि कितनी अच्छी है। यह चित्र कवि ने खींचा है। कहीं हो रहा था ऊंटों का विवाह तो विवाह में गीत गाने वाले चाहिए ना, सो गीत गाने के लिए गधे बुलाए गए। वे गधे ऊंटों की प्रशंसा करते हैं, ओहो कितना सुंदर रूप है। अरे कहीं ऊंट का रूप सुंदर होता है? उसकी गर्दन टेढ़ी, पीठ टेढ़ी, पैर टेढ़े, सारा अंग टेढ़ा, पर गधे ऊंटों की प्रशंसा करते हैं तो ऊंट भी गधों की प्रशंसा करते हैं, अहो कितनी सुंदर ध्वनि है। तो जैसे गधों ने ऊंटों की प्रशंसा कर दी और ऊंटों ने गधों की प्रशंसा कर दी, यों ही यदि एक दूसरे की प्रशंसा में यह पुरुष मुग्ध हो जाता है, चुत हो जाता है, तो यों ही समझना चाहिए परस्पर में सभी का अंतरंग में कलुषित परिणाम है। कलुषता केवल द्वेष को ही नहीं कहते हैं। क्या कहा, मैंने एक दूसरे की प्रशंसा करी और उसमें अच्छा अच्छा मानते हैं, तो ये भी कलुषता हुई। उससे भी बढ़कर कलुषता है राग की। राग का संकट, यानी ये सभी लोग तो राग यानी अनुराग जो है उसको अच्छा समझते हैं, द्वेष को ही बुरा समझते हैं। तो कहते ये तो बड़ा संकट है, और भी बड़ा है। यह आत्मदेव ज्ञानानंद का निधान है। निधान समझते, खजाना है। ज्ञान और आनंद का निधान है, भरपूर भरा पड़ा है। स्वयं ही अनंत आनंद स्वरूप है, ऑर्डिनरी नहीं। ज्ञान स्वभाव के कारण तो इसमें इतनी सामर्थ्य है कि समस्त लोक और अलोक को, भूत भविष्य को यह एकदम स्पष्ट जान सकता है। इतना महान ज्ञानानंद के निधान इस प्रभु की, जिसने ओट कर दी है, यानी उसके वो आड़े आने से वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओट कर दिए हम कहें उसकी ओट में, उसके आड़े आने में, जैसे सामने बहुत बड़ा समुद्र है और हमने आँख के सामने ऐसे उंगली रख दी तो समुद्र भी नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं जिसने ओट कर दी है, जो उड़कर उपयोग और प्रभु के बीच में अटक कर आ गया है। प्रभु ने अपना ज्ञानानंद स्वभाव और मेरा वर्तमान उपयोग, राग के कारण ये प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। दर्शन कहाँ हुए, उपयोग में। हमारे उपयोग में हमें ज्ञान हो जाएगा तो ये राग उसके बीच में आ गया। तो उपयोग और राग, उपयोग अपने को राग रूप मान रहा है तो उसके स्वभाव भाव के जो दर्शन नहीं हो रहे थे। ऐसे इस राग को अपना कितना बैरी बताया जाए, जिसने कि इस प्रभु का दर्शन ही रोक दिया है। यह राग का संकट हम आप पर कठिन लगा हुआ है। विषय में क्या आनंद है, जो आनंद ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व के उपयोग में है, वह आनंद कहीं भी नहीं है। मनुष्य नवीन नवीन आनंद के लिए नवीन नवीन तैयारी किया करता है। नवीन नवीन आनंद है ने पुराने वही अभी उसको अच्छे नहीं लगते। नया जो कुछ खोज निकलती है तो वो अच्छा लगता है, उसके पीछे दौड़ता भी रहता है। पहले तो केवल रेडियो था उस जमाने में, फिर टीवी आया तो टीवी के पीछे, फिर तो टीवी के बाद और कितने कितने क्या क्या है, अभी चैनल्स निकले, पहले तो एक ही था। अभी मोबाइल आया, उसमें क्या क्या और हो गया व्हाट्सएप और क्या क्या होता है। तो नवीन नवीन आनंद के लिए नवीन नवीन तैयारी किया करता है। जरा विषयों के आनंद की धुन तज कर छोड़ कर आत्मीय आनंद भी तो तको तको, यानी उसको देखो कितना अलौकिक आनंद है, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ उद्यम करो। अभी ये बाहर की चीज़ें कितनी भी महंगी भी क्यों ना हो, उसके पीछे पागल जैसे दौड़ेगा। और ये तो अपनी चीज़ है, मुफ्त में है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर भी उसकी महत्ता ही नहीं लगती इस चीज़ को। आत्म कार्य के भावात्मक यत्न में सिद्धि। भैया जो अपना काम है वह काम किए बिना नहीं होता, वह काम किए बिना नहीं होता। आधी केले की पाई गई, ऐसी कोई उक्ति है ना रामदास की कुछ है, आधी केले की पाई गई, उसके पहले का वाक्य क्या है? रामदास की, संत रामदास की कोई उक्ति है, आधी केले की पाई गई, उसके पहले का वाक्य मुझे याद नहीं। ये जो कि ना अपना काम है वह, आवाज आ रही है? मुझे भी आवाज कम दी आ रही है। उसमें नहीं आ रही क्या? अच्छा, जो अपना काम है वह काम किए बिना नहीं होता। हम आत्मीय आनंद का अनुभव करना चाहे तो अंतरंग में बड़ा त्याग और बड़ा तपश्चरण करना होगा। हम बाहरी त्याग और तपस्या की बात नहीं कर रहे। क्या कहा? ये छोड़ा वो छोड़ा, इतना उपवास किया, उसकी बात नहीं कर रहे, वो बाहरी हो गया। बाह्य में गृहस्थी की स्थिति हो अथवा साधु की स्थिति हो, यानी गृहस्थ में रहकर भी वो बाहर की त्याग की बात ही नहीं, अंतरंगी की बोल। तो कहते बाह्य में गृहस्थी की स्थिति हो अथवा साधु की स्थिति हो, उसकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है। किंतु ज्ञान रूप है यह आत्मा, जानने का तो इसे अधिकार है, जानने की स्वाधीनता है। तो चलो अब यह पदार्थ, पर पदार्थों का न जानकर जानने वाला तो यह है स्वयं। इस जानने वाले को ही जानने के लिए अपना आग्रह बना ले। क्या कहते हैं? जानने में स्वाधीन है ना, और वो जानने में, पर को जानने में लगा है। अब इसको किसका आग्रह करना है? अपने को ही जानने का आग्रह रखना है, बस ये बात है।
हेलो।
ऑन है? ऑन किया? हेलो। हेलो। ये बराबर नहीं है। हेलो। ये बराबर है? ये नहीं बराबर। हाँ देखो, अभी आगे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। देखो, बाहर त्याग और तपस्या की बात ही नहीं है। गृहस्थ हो या साधु हो, वो जानने वाला जो है उसको अपने को ही जानना है, बस जानने वाले को जानना है, इतनी बात हुई है। यहाँ लिखा ना कि जानने का तो इसे अधिकार है, जानने की स्वाधीनता है। तो चलो अब यह पर पदार्थों का न जानकर जानने वाला तो यह है स्वयं, इस जानने वाले को ही जानने के लिए अपना आग्रह बना ले। इतनी उत्कृष्टता मूल में उत्पन्न हो तो सब काम बन सकता है। बात कितनी है? मुझे ही जानना है। आशय ही हमारा विपरीत है। खाने पीने मौज उड़ाने के लिए अपना जीवन समझे तो फिर हमें चटपट नहीं मिलेगा, सही रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे दृष्टि हम बनाते हैं वैसा ही हमारा यत्न होता है। ये ऑन है, इसकी दूसरी तरफ ले जाए। वैसा ही हमारा यत्न होता है। इस मनुष्य जीवन का लाभ आत्मचिंतन, आत्ममनन और आत्मीय आनंद के अनुभव के लिए माने और अपना लक्ष्य विशुद्ध कर फिर इसके लिए प्रयत्नशील रहा करें। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही हमारी गति होगी। इंद्रिय विषयों में शांति, यह जीव इस स्वतंत्र निश्चल विकल्मश यानी कल्मश से रही अपने प्रभु को न पहचान कर क्योंकि इसमें किसी न किसी जगह रमने का स्वभाव पड़ा है, इस कारण यह परपदार्थों में रीझने की परिणति बनाता है। क्या कहा? कहीं न कहीं रमने का स्वभाव, कहीं न कहीं उसी में एकाग्र हो जाता है, उसी में अच्छा लगता है उसको, तो वहीं रम जाता है, वो वही उपयोग लगाता है। रमता है ना, क्या है, वहीं उसी को जानते रहता है। तो कहते परपदार्थों में रीझने की परिणति बनाता है, रीझने ने उसको देख देखकर सोचो और तक हित क्या है और अहित क्या है इसे भी यथार्थ नहीं समझ सकता है। भला अनुभव से ही देखो, इंद्रियों द्वारा किसी भी विषय के भोग के पश्चात भी किसी के कुछ तृप्ति और संतोष रह पाता है क्या? कोई सा भी विषय ले लो, चाहे रात भर संगीत सुने, राग रागनियां सुने, पर उसके बाद थकान, निद्रा, प्रमाद हो जाते हैं, कार्य हानि भी होती है, सब हानियां ही हानियां हैं, पर कल्पना से उसे मौज मान लेते हैं। ऐसे ही कोई भोजन सरस, स्वादिष्ट, गरिष्ठ, आसक्तिवश खूब खाए, पर खाने के बाद पड़ा रहना, पेट पर हाथ फेरना, चूरन चटनी की तलाश करना, हाजमोला खाओ और क्या क्या खाओ, इतना खाता है खाते समय तो ख्याल नहीं आता, बाद में तो चला नहीं जाता, अजगर जैसा पड़ा रहता है केरे। कितनी देर तक उसका कष्ट भोगना पड़ता है। और स्पर्शन इंद्रिय का विषय, काम के विषय का पछतावा तो सबसे अधिक हुआ करता है। जिन इंद्रियों के भोगने के पश्चात भी पछतावा बना रह सकता है, उन असार इंद्रिय विषयों में क्या सार की बात बताई जाए, वह हितरूप नहीं है। लेकिन मोह में जीव अहित की ही प्राप्ति का उद्यम बनाए रहता है। धर्म मर्म के परिचय बिना शांति का अलाभ, यानी पहले धर्म का मर्म का परिचय करना चाहिए। भैया हितरूप है सम्यक ज्ञान और वैराग्य, इनसे जो लोग दूर रहा करते हैं उन लोगों का स्वहित में मन नहीं लगता। हित की प्राप्ति और अहित के परिहार का होश भी नहीं रहता, यानी कोई उनको सुनाने भी जाए तो भी उनको वो अच्छा नहीं लगता। इस मिथ्यात्व के रोग में ऐसा है यह दुखी प्राणी। किंतु आचार्य देव कहते कि हे आत्मन, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम सुकुमार चिकित्सा बताएंगे। सुकुमार ने बिल्कुल ये बच्चे के भी हो सकते, चिकित्सा ने उसका उपाय जो है रोग का इलाज। भय मत करो, है भी यह बहुत सुकुमार चिकित्सा। क्या करना है? केवल ज्ञान द्वारा ज्ञान में ज्ञान की बात घटाना। कितनी सुकुमार चिकित्सा है, यही धर्म का मर्म है। क्या करना है? ज्ञान के द्वारा ज्ञान में ज्ञान की बात घटाना है। जिसके भी हृदय में स्वच्छता बन चुकी है, वह व्यवहार के अनेक धर्म के श्रम करके भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। क्या कहा? जब तक नहीं होता तब तक ये करूँ कि नहीं करूँ हर एक का प्रश्न होता है। तब तक मैं क्या करूँ? तब तक पुण्य करना चाहिए ना, यानी उसी में कहीं ना कहीं मिठास, कहीं ना कहीं उसकी अधिकता पड़ी है। यहाँ क्या कहते हैं? व्यवहार के अनेक धर्म के श्रम करके भी, उसको श्रम कहा है, ये जो व्रत उपवास आदि है उसको श्रम कहा। कैसे? बिना विवेक के, बिना तत्व ज्ञान के। हाँ हाँ बोलो। नहीं, वो तो कुछ गलत हुआ है उसमें। जिसके भी हृदय में स्वच्छता बन चुकी है, उसका अर्थ क्या करना चाहिए? यानी ऐसा भी ले सकते हैं, हृदय में स्वच्छता बन चुकी है, नहीं वो तो हित की प्राप्ति के लिए व्यवहार के धर्म कर रहा है ऐसे। यानी वो हित तो चाहता है और हित के लिए व्यवहार के अनेक धर्म करता है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, ऐसा उसका अर्थ ले लो। क्या कारण है कि वर्षों भक्ति करते हुए हो जाए, अनेक झांझ मंजिरें भी फूट जाए भक्ति करते करते, कितने ही बड़े बड़े विधान उत्सव समारोह भी धर्म के नाम पर कर डाले हो, और भी धर्म के नाम पर बहुत बहुत विधियां बनाई हो, लेकिन समय बहुत गुजरने के बाद भी क्रोध में कमी नहीं, घमंड में कमी नहीं, मायाचार में भी कमी नहीं, लोभ का रंग तो कहो पहले से भी अधिक बढ़ा हुआ हो, यह अपने जीवन की निगरानी करने के लिए कहा जा रहा है। ये तो अन्य बातें बताई, अगर स्वाध्याय करके भी यही बात हालत हो तो वही की वही है, वो भी एक व्यवहार की बात हो जाएगी, उसको भी व्यवहार कहेंगे। अपनी परख देख लीजिए, यदि कषायों में विषयों में फर्क आया हो तब तो समझो कि हमने पद्धति से धर्म पालन किया है। हम जब एक स्वाध्याय करते हैं तो हम अपने ही परिणामों को टटोल कर देखे, पहले की जो बाहर रुचि थी वो कितनी कम हो जाती है अपने आप, उसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। लोगों को ऐसा लगता है क्या अपने पर जबरदस्ती करते हो, ये जबरदस्ती नहीं होती, ये अन्य की रुचि बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, यानी भले कहीं जबरदस्ती जाना भी पड़े, किसी त्योहारों में कहो, किसी फंक्शन में, फिर भी वहाँ मन नहीं लगता है, ये कहना चाहते। और पहले क्या होता था, स्वयं ही वो उसको उमंग आती थी जाने के लिए, अरे इधर जाओ उधर जाओ। नहीं आता है फर्क तो खोज करना चाहिए कि कौन सी त्रुटि इसमें रह गई है। जिस एक त्रुटि के बिना सारा यंत्र चला देने पर भी गाड़ी नहीं चलती है, नहीं समझे? मोटर गाड़ी है और उसमें कोई एक पुर्जा ढीला हो गया तो नहीं चलेगी। अब उसमें तो कितने सारे सामग्री यंत्रों की है ना, तो उसमें से एक कोई चीज़ नहीं हो तो भी वो स्टार्ट नहीं हो सकती गाड़ी, यही कह रहे। वो एक त्रुटि यानी वो कमतरता, जो कुछ है कमी हो गई उसमें, सारा यंत्र चला देने पर भी गाड़ी नहीं चलती, वह कौन सी त्रुटि है? वह त्रुटि है मोह नहीं मिटा है। अपने आप को सबसे न्यारा ज्ञान मात्र नहीं जान पाया। तो मैं शरीर हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, ये इसी को मैं समझ लिया। अपने को ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र नहीं समझ पाया। यह मूर्त शरीर, ये मूर्त कल्पनाएं है ना, शरीर तो मूर्त है पर कल्पनाएं तो इस जीव ने खड़ी कर दी। मूर्त क्यों? क्या वो तो ख्याल में आ रही है ना, कल्पनाएं, ये रागादिक विभाव, इन्हीं रूप अपने को माना, किस रूप माना, ये शरीर, कल्पनाएं और ये रागादिक। और इसी मिथ्यात्व की प्रेरणा से हमने धर्म की साधना की, यानी अपने को शरीर माना, अपने को रागादि माना, ये कल्पनाओं को ये अपना स्वरूप माना, और इससे ही हमने धर्म साधना करना चाहिए। तो ये तो मूल में भूल तो कायम रखी, और फिर इससे धर्म होगा मान लिया। धर्म प्रीति की प्रेरणा से नहीं, धर्म प्रीति की प्रेरणा से नहीं की, यानी धर्म की प्रीति नहीं थी इसके पीछे, किंतु मान पोषण के लिए अपने विकल्प कल्पना में जो कुछ भी अपनी ख्याति के साधनभूत समझा, उसके लिए इसने धर्म साधन किया, बड़ा विधान कराया, कोई मंदिर बनाया तो लोग में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, नाम खूब हो जाए, इसलिए कि उसका स्वयं का अभिप्राय तो वो समझता है कि नहीं, बाहर भले वो व्यक्त हो नहीं हो, उसके तो पीछे उसको अपना अभिप्राय तो ख्याल में आ रहा है। और यही कारण है अनेक वर्ष गुजर जाने पर भी कषाव में अंतर नहीं आ पाता है। स्वाधीन सुगम धर्म पुरुषार्थ, भैया धर्म के लिए बाह्य में श्रम व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, बाहर में कोई पुरुषार्थ नहीं है इसका। श्रम व्यायाम यानी वो कोई व्रत उपास करो तो हो जाएगा, तो कहते नहीं, किंतु चुपचाप ही गुप्त ही गुप्त भीतर की ओर प्रवेश करते हुए एक अपने आप में कोई अपूर्व अंतः पुरुषार्थ करने की जरूरत है, जिस उपयोग में किसी क्षण किसी परवस्तु विषयक मोह न रहे, अपने आप को स्वतंत्र अकेला मान सके, यानी मैं तो ज्ञान मात्र, ना उसमें कोई अन्य बाल बच्चे दिखेंगे, पति पत्नी अन्य कुछ दिखे, ना भाई बहन, ना ही शरीर दिखेगा, ना ही राग दिखेगा, बस अपने मात्र ज्ञानमय अनुभव होगा। तो अपने आप को स्वतंत्र अकेला मान सके, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं अमुक हूँ, ये सब कल्पनाएं इससे निकल जाए, जिस किसी भी क्षण उसी क्षण इसमें से आनंद फूट निकलेगा, आनंद का अनुभव होगा, जैसे उसका जिसमें उसका आनंद का फवारा फूट उठेगा इस तरह से। उसी आनंद में यह सामर्थ्य है कि भव भव के संचित कर्मों को नष्ट कर देगा। कर्मों को नष्ट करने में समर्थ शुद्ध ज्ञानानुभूति है। फिर तप किस लिए किया जाता है? उन दुर्धर तपश्चरणों का प्रयोजन विषय कषायों को, मलिन संस्कारों को मिटाने का है, क्योंकि वो अनादि से पड़े हैं, तो बारंबार उपयोग उसमें, इन्हें ऐसे दुर्धर तप में भी उपयोग अपने में ही लगता है ना, इसकी वो तो और कसौटी है ज़्यादा, इसलिए और कठिन कठिन अवस्थाओं में परिस्थितियों स्वयं खड़ी करके वो अपने ध्यान में एकाग्र रहना चाहते हैं। बाह्य तप का विशिष्ट सहयोग, कर्मों का निर्जरण काय क्लेश से नहीं है, क्या कहते हैं, यानी शरीर को बहुत तकलीफ हो जाए इससे कर्म की निर्जरा नहीं होती है, फिर भी काय क्लेश रूप तपश्चरण आवश्यक है। देखो ऐसे विरोध लगता है ना इसमें, तपश्चरण कर्म शत्रु के विजय के प्रसंग में ढाल का काम करता है, बचाने का, जैसे लड़ाई में तलवार और ढाल दोनों ही यूज करते हैं, जैसे तलवार का काम नहीं करता। कर्मों को नष्ट करने के लिए वह विषय शत्रु से बचाने के लिए ढाल का काम करता है। तलवार का काम तो यह शुद्ध ज्ञान वृत्ति करती है, देखो कितना अच्छा बताया, क्या कहा अपनी भाषा में, ये जो बाह्य तपस्या वगैरह वो तो शुभराग है, तो शुभराग से तो जो कुछ यथायोग्य बंद होगा, और जो निर्जरा होगी वो तो शुद्ध ज्ञान वृत्ति से होगी, शुद्धात्मानुभूति से होगी। इन्होंने अलग भाषा में बताया, बाह्य जो तपस्या है उसे वो विषय शत्रु से बचने के लिए कि उसमें उपयोग नहीं उलझे, इसलिए उसमें वो बाह्य तप भी अंगीकार करता है वहाँ पर। परंतु ये जो कर्मों का छिपाने का कार्य होगा वो तो शुद्ध ज्ञान वृत्ति यानी शुद्धात्मान में रमणता से ही होगा। तो आप तो वही पूछ रही थी, आप कहेंगे हम तो यही कह रहे थे कि विषय शत्रु से बचने के लिए हम तप क्यों न करें, परंतु उसको तप नाम भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आत्मा की अनुभूति जब तक नहीं है तब तक तो वो केवल बाह्य क्रिया रूप रह जाती है। उसके साथ वाला जो है उसको व्यवहार नाम कब देंगे, जो निश्चय रूप वहां आत्मा की अनुभूति हो तब। कितना सीधा सुगम उपाय है अपने आप को शांत बनाए रखने का, यानी सबसे पहले में क्या करना है तो शुद्ध ज्ञान की अनुभूति करना है। बाह्य तपस्या वगैरह आगे की स्टेज है, अंतरंग में जितना स्थिरता बढ़ेगी वैसे सहज रूप से बाह्य में भी ऐसे दुर्ध तप अंगीकार करके विषयों से बचा जा सकता है। परंतु केवल विषयों से बचने के लिए जानबूझकर करे यो तो ये तो शुभ प्रवृत्ति हुई, शुभ भाव हुआ। इसके लिए तीन शल्यों का त्याग करना सबसे पहले आवश्यक है। ये तीन शल्य कौन से? ब्रह्मा, हाँ, माया, मिथ्यात्व और निदान। और ये तीन शल्यों का त्याग किसके लिए है? जो बाह्य तप अंगीकार करता है उसके लिए, यानी मुनियों के ये तीन शल्य नहीं होते, निश्शल्यो वृत्ति ऐसा सूत्र है। वे शल्य है मायाचार, मिथ्यात्व और निदान। यह शास्त्रोक्त बात है, पुरानी है, फिर भी यह रोज रोज नई ही बात है। जैसे ऋतु पुरानी होती जाती है और नवीन ऋतु अपनी नवीनता ही प्रकट करती रहती है, ऐसे ही ये उपदेश पुराण पुरुषों के दिए हुए, पुराण पुरुषों के ने बहुत चले आ रहे हैं, लेकिन ये सदा को जीवों के लिए कल्याणभूत है। मायाचार की अनावश्यकता। मायाचार में जिसका हृदय रंगा हुआ है वह धर्म पालन का पात्र नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गंदगी है मायाचार। इस जगत में कौन सा राज्य जमाना है, कौन सी विपत्ति मेटना है, किसकी प्राप्ति के लिए मायाचार का परिणाम किया जा रहा है? शुद्ध सरल चित्त रहते कुछ मिलता हो तो मिल जाए, न मिलता हो तो मत मिले। जो दुख भोगने का साहस नहीं रख सकता उसे आनंद पाने का अधिकार नहीं है। यानी कौन सा दुख? ये तो बाह्य में भले कोई संयोग न मिले और ये चाहता है मायाचारी करने से मुझे मिल जाए, तो कहते वो तो सुख का भी अधिकारी नहीं है। सांसारिक सुख के बीच रहकर आनंद नहीं मिलता, आनंद तो शुद्ध ज्ञान वृत्ति से मिलता है। किसके लिए मायाचार करने का परिणाम बनाए? यह मायाचार प्रभु का दर्शन नहीं करने देता। वक्रता को दूर कर, देखो जो सरल परिणाम है हमने उस दिन देखा था, वो आज्ञा सम्यक वाला, सरल हृदय वाला है, जो उपदेश सुनता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा सहज रूप से एक्सेप्ट करता है, और वक्र परिणाम वाला उसमें कुछ ना कुछ निकालेगा, उल्टा पुल्टा करके उसमें से कुछ अर्थ का अनर्थ करके निकालेगा, और सोचेगा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, देखो कैसे तर्क लगाए मैंने। तो वक्रता यानी कुटिल परिणाम जो है दूर कर, हार्दिक आशय स्वच्छ बनाना माया निवारण है। हार्दिक यानी हृदय का, हृदय से वो हार्दिक शब्द आ गया। उसका हार देने उसका अंतरंग है। मिथ्यात्व व निदान से आत्मविघात। दूसरी शल्य है मिथ्यात्व, मोह। किसी भी परवस्तु में ऐसी श्रद्धा जम जाना कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इसमें किसी भी परवस्तु में, शरीर में, राग में, सब, यह कल्पना, यह शल्य इस जीव को बहुत परेशान करती है। इस कल्पना को मिटाना यह दूसरी शल्य का निवारण है। तीसरी शल्य है निदान। निदान में पंचेंद्रियर मन के विषयों के साधनों की इच्छा। आशा प्रतीक्षा बनाए रहना यह निदान है। ये केवल हम कुछ प्लानिंग करना उसको निदान नहीं कहेंगे। यह पंचेंद्रियों के विषय कषाय उसके बारे में जो कुछ इच्छाएं रहती है वो निदान है। नहीं तो हम कहेंगे ना, आप प्रचार प्रसार करते उसके भी प्लानिंग तो बनाएंगे, तो उसको निदान नहीं कहने में आ रहा। जैसे हम यात्रा करना चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमको स्वाध्याय जाना है, उसको निदान नहीं कहेंगे। तो हाँ, ये इंद्रियों के विषयों के बारे में या मन के कल्पनाओं में मुझे ये मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, यानी वो तो अभी ऐसा है ना, निदान की बातें ऐसी ना। ऐसे किसी ने, वो राजा ने किसी को पराभव किया तो उसने, नहीं मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा कुछ चाहता है कि पराभव में भी वो करके दिखाना चाहता है। यानी वो तो निदान के कारण तो पराभव में भी वैसे ही प्रसंग बन जाते हैं। यहाँ लिखा ना, पंचेंद्रियर मन के विषयों के साधनों की इच्छा आशा प्रतीक्षा बनाए रहना, यानी वो निदान रूप वो तो चलता रहेगा कि नहीं, उसका वो तो भाव चलता रहेगा। उसकी प्रतीक्षा में ये कब होगा, कब ऐसा मुझे ये करना है, किसी का बदला लेना है, वो तो वही बात हो गई ना, विषय और कषाय सब आ गए उसके अंदर। क्या होगा कुछ वर्षों बाद, इसका ठिकाना कुछ नहीं है, लेकिन पचासों वर्षों के और परभव के भी निदान बांधे जा रहे हैं। ये तो मुझे करना है, परभव में क्यों नहीं सही। अरे वर्तमान में जो आनंद में तेरा ज्ञान स्वरूप है, उसकी दृष्टि करके वर्तमान का अतुल आनंद तो लूट ले। जो साक्षात ज्ञान आनंद में अपना स्वरूप है, बस उसकी दृष्टि करने का मात्र इतना ही करना है तो अतुल आनंद लूट ले। भावी चिंता निदान करके क्यों वर्तमान समय भी खराब कर रहा है। ये जीव तो या तो भविष्य की चिंताओं में ही डूब रहता है, या तो भूतकाल में बीता है उसके वो उसी को दोहराता रहता है मन में, मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये खाया था, वो देखा था, है ना। और अगला समय भी खराब कर रहा है। यह निदान भी शूल की तरह, शूल समझते है, कोई कांटा घुसा हो पैरों में तो अंदर ही अंदर वो कितना पीड़ा देता है, शूल की तरह जीव को पीड़ा दिया करता है। निष्काम आत्म स्वभाव को निरख कर निदान शल्य मेटे। निष्काम काम में कोई कामना नहीं है, ऐसे आत्म स्वभाव को निरख कर ये निदान शल्य दूर करे। निश्शल्य पद्धति से सशल्यों की सुकुमार चिकित्सा का संकल्प। जिनके शल्य है ऐसों की अभी चिकित्सा करना है, उसको ट्रीटमेंट देना है। वो ट्रीटमेंट भी एकदम सॉफ्ट है ना, सुकुमार है। और वो पद्धति कौन सी है, निश्शल्य पद्धति है, यानी शल्य रहित करने की पद्धति है। यो तीनों शल्यों से रहित होकर ज्ञान जागृति के लिए अपना प्रयत्न रखो तो उसमें अवश्य ही अतुल आनंद का अनुभव होगा। जिस अनुभव के प्रसाद से ये शरीर के बंधन, कर्म के बंधन, जन्म मरण के संकट ये सब टल जाएंगे। आचार्य देव इसी आरोग्य अवस्था को पहुंचाने के लिए सुकुमार क्रिया रूप में सम्यक की आराधना का उपाय बता देंगे। पहले तो उसका महात्म्य बताया, अब कहते ये तीन शल्य पड़े हैं तो इसी ट्रीटमेंट देंगे अच्छी, और एकदम सॉफ्ट है, उसे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, तो ये सम्यक की आराधना का उपाय यहाँ बताएंगे। सत्रह नंबर, विषय विषमाशनोत्थित मोहज्वर जनित तीव्र तृष्णास्य निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रम श्रेयान्। मोहज्वर पीड़ित जीव को सुगम चिकित्सा का आश्वासन। हे आत्मन, अनादिकाल से विषय विष के विषय रूपी विष बताया, विषय विष के अधिक भोजन कर लिया जाने से महान मोहज्वर तुझे हुआ है और इस मोहज्वर से तीव्र तृषा पैदा हुई है। जैसे लौकिक में कुछ चीजें खाने से ज्वर उत्पन्न होता है और उससे ज्वर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है, इसे तृषा पैदा हुई और उस तृषा के कारण तू कमजोर हो गया है। पर घबरा नहीं, तेरी इस कठिन बीमारी में पेय जैसा सुकुमार इलाज किया जाएगा। जैसे बुखार में तीव्र प्यास लगती है तो उसके पेय दिया जाता है, जल कहो या अन्य जो कुछ उसके तौल डाल के देते हैं। आचार्य देव सुकुमार क्रिया के संबंध में बार बार करुणा बुद्धि से कहते जा रहे हैं तुझे कि तुझे जो कुछ उपाय बताए जाएंगे वे सब तेरे मन माफिक होंगे, कहीं कष्ट न आएगा। क्योंकि ये जो घबरा जाता है, आचार्य तो ऐसे ऐसे तप कर रहे हैं, उसको लगता है मुझे भी ऐसे तप करने पड़ेंगे, तो पहले उसको तो विषयों की तो रुचि है और कहता है ये ऐसा धर्म हमको नहीं चाहिए, हमसे ये नहीं होगा। तो कहते ये कि इसकी बात नहीं है, तेरे लिए एकदम आसान अच्छा है ना, तेरे माफिक होगे, उपाय बताए जाए कोई कष्ट नहीं होगा। तू धीरे धीरे उन्हें हृदय में रख, तेरी चिकित्सा बहुत सुकुमार होगी, क्योंकि ऐसी कमजोरी में सुकुमार चिकित्सा ही ठीक बैठती है। विषय विष भोक्ता की आसक्ति। यह विषय रूप भोजन विषम भोजन है जो सुपच नहीं है। विषम है ना, वो पचने में बराबर कठिन है, वो तेरे लिए कुपथ्य है ना? जीवों को ये विषय भोग बड़े सस्ते मालूम पड़ रहे हैं। बल है, साधन है, इन विषयों का भोगना बहुत सुगम मालूम होता है, लेकिन ये विषय बड़े महंगे पड़ेंगे। क्या कहते हैं, अरे हमारे पास पैसा नहीं, सब साधन भी अनुकूल है, जो चाहो वो मंगा सकते, जो जो चाहो वो खाओ, जो चाहो वो पहनो, जो चाहो ये तो कहते कि ये विषयों का भोगना बहुत सुगम मालूम होता है, लेकिन ये विषय बड़े महंगे पड़ेंगे। वर्तमान में भी इनसे महान क्लेश होगा और परलोक में भी इनसे महान क्लेश बनेगा। वो संज्ञा के प्रकरण में आता है ना, तीव्र इच्छा वासना, तो कहते इच्छा के यानी वो इच्छा के अनुकूल सामग्री मिले तो भी और न मिले तो भी ये जीव दुखी रहता है, इस भाव में और पर भाव में भी। यही बात यहाँ बता रहे, देखो वर्तमान में भी इनसे महान क्लेश होगा। किसे, विषयों से। आप कहते अरे विषय मिलने पर तो हमको सुख लगता है, तो कहते नहीं, वर्तमान में भी महान क्लेश होगा और परलोक में भी इनसे महान क्लेश बनेगा। जैसे किसी पुरुष के विरुद्ध भोजन हो जाए तो उस भोजन से तृषा उत्पन्न होती है और उसमें सामर्थ्य घट जाती है। कोई गरिष्ठ भोजन कर लिए या कोई जो अनुकूल नहीं ऐसा भोजन बना लिए तो उसमें तो पचने में कठिन है, तो उसमें तो तृषा बढ़ जाती है। और उस समय किसी पीने योग्य पेय की दवा का ही इलाज होता है। ऐसे ही तो बड़ा निशक्त हो गया है, मोह ज्वर से पीड़ित है, तुझे भी बहुत सुकुमार यह उपदेश दिया जाएगा। यहाँ विषयों को विष की उपमा दी है, यह तो विष से भी बुरा है। विष तो एक ही भव में प्राण हरता है, किंतु ये विषय न जाने कितने भवों में इस जीव को रुलाएंगे। समझ में आते बात? ये कोई नाग यहाँ आया, सर्प आता है तो क्यों डरता है? अरे वो काटेगा विष से मेरा प्राण चला जाएगा, यानी वो विष इसका एक भव गवा देगा, ये उसका घात होगा। मतलब विषय ऐसे विष है कि भवो भवों तक इस जीव का नुकसान होता है उसके कारण। कोई गरिष्ठ भोजन कर ले और उसे कोई गरिष्ठ ही औषधि दे दी जाए तो यह उसका इलाज उचित नहीं है। ऐसे ही विषयों की वासना से जो वेदना उत्पन्न हुई उसके इलाज में कोई विषय भोगों को ही चिकित्सा माने तो वह उसके विपरीत चिकित्सा है, उल्टा हो जाता है। यानी विषयों की वासना यानी इच्छा, विषयों की इच्छा से वेदना यानी दुख उत्पन्न हुआ और उसका इलाज क्या करते हैं, हम भोगों को इलाज मानते हैं, तो कहते हैं उसका उल्टा हो जाता है। वो चिकित्सा उसका इलाज नहीं है, वो विपरीत चिकित्सा है, उल्टा हो जाता है उससे। राग वेदना की चेष्टाएं। भैया, राग कर करके किस जीव की भलाई संभव है? पुराण पुरुषों को देखो, जब तक राग रहा तब तक क्लेश ही सहना पड़ा। भरत बाहुली का आख्यान सुना ही होगा, जब तक वे राज्य में रहे भरत अथवा बाहुबली, उस राज्य की लिप्सा के कारण दोनों की कैसी गतियां होती रही। लोग सुनकर उसे मूर्ता भरा काम बताते हैं। भरत का चक्र नगरी में प्रवेश नहीं कर सका तो उसे यह परख हुई कि कोई राजा अभी वश करने के लिए रह गया है। उसने देखा कि बाहुबली रह गया है, चढ़ाई कर दी। बाहुबली भी अपना अपमान महसूस करने लगे, उन्होंने भी लड़ाई शुरू कर दी। क्या हुआ यह बहुत बड़ी कथा है, पर रागवश लड़ लड़ कर अंत में हुआ क्या? बाहुबली विरक्त हो गए, कुछ समय बाद भरत भी विरक्त हो गए। वह नगरी वहीं की वहीं रही, वह पुद्गल समागम वहीं का वहीं रहा और वे दोनों यहां से चल दिए। वे महापुरुष थे, निर्वाण पधारे, पर यहां से तो गए। कितना महाभारत हुआ जिसमें मरने वालों में लाखों का तो शुमार होगा ही। न यहाँ कौरव रहे न पांडव रहे, वही नगरी वही समागम सब चलता रहा यहीं का यहीं। वे यहाँ से चले गए, यानी उनके प्रति मोह था, तब तक वो लड़ाई झगड़े सब चलते रहे, दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। कोई मर कर गए, कोई निर्वाण पारम। विषय विष राग फल। राग में किसने सुख पाया है? कोई राग बनाए तो बनता भी तो नहीं है। घर में कब तक रहे, कब तक प्रेम बढ़ाए, आखिर वियोग होगा ही, मरना पड़ेगा ही। कोई भी यहाँ रहने का तो नहीं है, फिर किसी का राग निभता भी तो नहीं है। राग बनाया क्यों जाए? जब अंत तक यह राग चल नहीं पाता है तो फिर राग का राग क्यों करना? ये विषय विष विष से भी भयंकर है। सर्प को वर्प ने सर्प को विषधर कहा जाता है। सर्प का डसा हुआ मनुष्य एक ही भव में प्राण देकर गया, पर विषयों का डसा हुआ पुरुष इतने विकट कर्म बंध कर लेता है, इसे अनेक भवों में रुलना पड़ता है। इस जीव को पीठ पीछे की गुप्त आपणी विपदा का ध्यान नहीं है और अपनी समझ में जो सामने समागम है उसकी ओर दृष्टि है और उससे अपने को महान मानता है। बैरी विषय साधन, जिससे अपने बैर का बदला लेना हो, कोई दुश्मनी निकालनी हो, तो सबसे बड़ी दुश्मनी निकालने का तरीका यह है कि उसे विषयों के साधन जुटा दिए जाए। कुछ संपदा हो, कुछ ठाट बाट हो, किसी से कहीं कुछ प्रेम हो जाए, इत्यादि किसी प्रकार की बातें कर दे, यह सबसे ऊंचा उपाय है किसी से दुश्मनी निकालने का। तो आप कहते होंगे कि यही तो हमारे माँ बाप आदि किया करते हैं, जिससे दिल राजी हो, विवाह हो जाए, अच्छा विषय साधन जुटाया जाए, यही तो किया करते हैं, कहाँ धर्म विद्या पढ़ाने का भाव रखते हैं। तो क्या वे सब दुश्मनी का ही काम कर रहे हैं? कुछ भी उत्तर दे लो, यदि बहुत विवेक रखकर उत्तर चाहते हो तो निमित्त दृष्टि से यह कह सकते हो, हाँ वे दुश्मनी निकाल रहे हैं। गृहस्थ धर्म है, पर माता पिता गृहस्थ धर्म निभाने जैसा तो शिक्षण नहीं दिलाते, इस ओर दृष्टि ही नहीं है। उनके तो अपना मोह है, मेरा यह कुल टिके कुल रहे, लोग कह दे कि यह इनका पुत्र है, ये इनके पोते हैं, बस इसी में ही खुश हो जाते हैं। धर्म के बारे में उनको सजग नहीं करते बच्चों को। रुकेंगे यहीं पर, 2-3 मिनट है ना, कितना है क्या समय? हाँ ठीक है, एक पैराग्राफ हो जाएगा। मोही की निंदा में प्रशंसा की मान्यता। भैया, दुनिया दुनिया की दृष्टि में जितनी भी प्रशंसा करती है वह सब इसकी निंदा है, पर यह मोही जीव निंदा को सुनकर भी खुश रहना चाहता है। इसे वास्तविक महत्व का परिचय ही नहीं है। इसकी वास्तविक महत्ता तो इसके ज्ञान से है, और उसके अन्य चीजों की प्रशंसा की जाती है, वो तो इसकी दुश्मनी जैसे है ना, कि वो उसी में और खुश हो जाता है, तो और उसके जो पहले ही मिथ्या तो पड़ा है और दृढ़ हो जाता है उसका। किसी सेठ का परिचय दिलाना है तो परिचायक पुरुष यह कहता है, आप इन्हें जानते हो? यह कौन है? इनके 4 लड़के हैं, 1 लड़का मिनिस्टर है, 1 डॉक्टर है, 1 कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पर है। इस प्रशंसा का क्या अर्थ हुआ? यह अर्थ हुआ कि ये सेठ जी कोरे बुद्धू है, इनके लड़के अच्छे हैं। यदि इनमें कुछ कला होती तो लड़कों का नाम लेकर क्यों इनकी बातें कही जाती? इनकी बात कहकर क्यों न प्रशंसा की जाती? पर वह इसी को सुनकर खुश होता है, वह हमारी बड़ी महिमा इसने गाई, ऐसा वह सोचता है। और प्रशंसा कर दी जाए, साहब इनके 1 5-मंजिला मकान है, इनके दरवाजे की सजावट बहुत अच्छी है, नक्काशी से खुदी हुई पत्थर की चौखट ऐसी है, आजकल कोई खोद नहीं सकता। यह परिचय दिया जा रहा है श्रीमान जी का, अर्थ क्या निकला? उन अचेतन पत्थरों में तो कुछ कला है, पर इन सेठ जी में कोई कला नहीं है। ये तो उस सेठ को सीधी सीधी गालियां सुनाई जा रही है, मगर वह सेठ सुनकर खुश होता है। रुकेंगे अभी यहाँ। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देता।